ओम शांति। परमात्मा के द्वारा सिखाया गया राजयोग एक ऐसी विद्या है जिस विद्या के आधार से जो चाहिए सो सर्व प्राप्तियां कर सकते हैं और जो कमी कमजोरियां मिटाना चाहो उसका खात्मा भी कर सकते हैं। अनेक जन्मों से जाने अनजाने में हम सभी आत्माओं से कोई ना कोई विकर्म हुए हैं, जिसका परिणाम क्या होता है ये बाबा ने अनेक गुह्य रहस्य से बताया है। तो राजयोग जो बाबा से सीखा है या बाबा सिखाते हैं उसकी विधि को जानना भी बहुत आवश्यक है। तो आज बहुत सुंदर विषय को लेकर हम सभी के समक्ष उर्मिला बहन जी आए हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं। राजयोग के आधार से विकर्म विनाश ये सुंदर विषय है, उसकी विधि हम उनसे सुनेंगे। राजयोग के आधार से सर्व प्राप्तियां कैसे करने हैं ये भी विधि वो बताएंगे। आज हम उनसे सम्मुख स्टेज पर मिल रहे हैं, उनसे सुनेंगे भी, लेकिन हर मास हम ज्ञानामृत मासिक के द्वारा उनसे मुलाकात करते हैं। बहुत सुंदर सहज और प्रैक्टिकल भाषा में उनके लेख होते हैं। तो आप पिछले 35 वर्ष से इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं और बहुत बड़ा योगदान आपका महायज्ञ में है, वो ज्ञानामृत मासिक के निमित्त आप सेवा देते हैं। तो इतना बड़ा ये बाबा का कार्य बाबा ने आप पर सौंपा है, ऐसे आदरणीय उर्मिला दीदी जी से हम सुनेंगे योग पर, योग के आधार से विकर्म कैसे विनाश होते हैं इस विषय पर। आदरणीय उर्मिला बहन जी, ओम शांति।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा ने इस साल को तपस्या वर्ष घोषित किया है और हम सब तो बाबा के हैं ही योगी बच्चे, तपस्वी बच्चे। हम बाबा के पास आए भी इसलिए योग तपस्या के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आए, और हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, और जब उस परिवर्तन को देखते हैं तो और ज्यादा योग तपस्या करने के लिए उमंग आता है। बाबा की मुरलियों में हम सुनते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे योग का प्रयोग करो। तो जो प्रयोग दुनिया में भी लोग करते हैं, जैसे वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने की शुरुआत के समय उनका जो मन होता है वो एकाग्र होता है, बुद्धि में कुछ तार्किक ज्ञान की बातें होती हैं, कुछ तथ्य होते हैं, और संस्कारों में दृढ़ता होती है। इन तीनों बातों के आधार पे वो प्रयोगशाला में जाते हैं और प्रयोग की शुरुआत करते हैं। तो प्रयोग के लिए बुद्धि में पहले कुछ थोड़ा ज्ञान जरूरी है, कुछ तथ्यों की नॉलेज जरूरी है। जैसे मान लीजिए एक वैज्ञानिक प्रयोग करता है, एक छोटा सा फार्मूला है H2O इज इक्वल टू वाटर, माना दो हिस्सा हाइड्रोजन को मिलाओ और एक हिस्सा ऑक्सीजन को मिलाओ तो पानी बनता है। अब पहले ये ज्ञान बुद्धि में रहेगा, उसके बाद वो प्रयोगशाला में जाकर के प्रयोग शुरू करेगा। फिर जब प्रयोग करेगा तो सामने रिजल्ट आएगा, तो उसके ज्ञान में वृद्धि होगी, अनुभव में वृद्धि होगी, फिर वो कोई और प्रयोग करेगा, इस तरह से उसका अनुभव बढ़ता जाएगा। तो यहाँ भी आध्यात्मिक क्षेत्र में जब हम प्रयोग करते हैं तो यहाँ भी हमारी बुद्धि में कुछ ज्ञान के बिंदु होते हैं और उन बिंदुओं को लेकर के हम एक प्रयोग करना शुरू करते हैं। फर्क इतना है कि वो लोग तत्वों पे प्रयोग करते हैं, जड़ तत्वों पे, प्रकृति के पांच तत्वों पे, और यहाँ प्रयोग करने वाला भी वही है और जिसपे प्रयोग किया जाएगा वो भी वही है। आत्मा ही जानना चाहती है, आत्मा ही जानने योग्य है, अर्थात स्वयं के ऊपर ही प्रयोग करना है। और दूसरा अंतर ये है कि वहाँ लैब में कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन राजयोग में तो कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ही नहीं है, कोई लैब की भी जरूरत नहीं है। जब चाहें बुद्धि में जो ज्ञान के बिंदु हैं उनके आधार पे हम प्रयोग शुरू कर सकते हैं। तो जैसे हमारी बुद्धि में ज्ञान के कौन से बिंदु हैं? हमारी बुद्धि में ज्ञान के बिंदु हैं, भाई मैं एक आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, प्रकाशमान आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, शाश्वत सत्ता हूँ, और जो मेरा पिता है वो त्रिलोकीनाथ सर्वशक्तिवान, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, वो भी एक ज्योतिर्बिंदु है और पांच तत्वों की दुनिया से परे परम धाम में है। तो जैसे उस वैज्ञानिक की बुद्धि में कुछ तथ्य थे कि भी दो हिस्सा हाइड्रोजन ले लो, एक हिस्सा ऑक्सीजन ले लो तो पानी बन जाएगा, ऐसे हमारी बुद्धि में भी तथ्य हैं, आत्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, और इन दोनों का आपस में कनेक्शन जुटेगा तो शक्ति का प्रवाह आएगा। वो वैज्ञानिक जब प्रयोग करता है तो अपनी बुद्धि को बाकी सब बातों से न्यारा कर लेता है, उसे ना घर याद होता, ना परिवार याद होता, ना संबंध याद होते, ना कोई टीवी, सिनेमा, नेट, कोई पार्टी, कोई खेल कूद, अगर इनको याद करने लगेगा तो प्रयोग बिगड़ जाएगा, क्योंकि बुद्धि तो एक ही है, एक बार में एक ही जगह लगेगी। और यहाँ भी प्रयोग करते समय केवल वो ज्ञान के बिंदु ही बुद्धि में रखने, अगर कोई और बात बुद्धि में याद आ गई तो प्रयोग ठीक से होगा नहीं, बिगड़ जाएगा। इसलिए देह को, देह की दुनिया को, पदार्थों को, आकर्षणों को, बीती हुई बातों को, सब को बुद्धि से हटा करके केवल जो स्वीकृत तथ्य हैं बुद्धि को उन्हीं के ऊपर एकाग्र करना है। और जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं ठीक तरीके से तो रिजल्ट निकलता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, शक्ति का प्रवाह आता है, अनुभूति होती है, शक्ति मिलती है, और जो बीती हुई बातें हैं या पुराने संस्कार हैं वो जलते हैं। महसूसता आती है कि जो बातें मुझे पहले स्मृति में आती थी वो अब आती ही नहीं है, जो बातें पहले डिस्टर्ब करती थी वो आती ही नहीं है अभी, या जो संबंध पहले बिगड़े हुए थे वो संबंध एकदम सुधर गए। तो वो रिजल्ट देखता है कि भाई मैं भी बदला और मेरे कारण और भी लोग बदले। इसी तरह से जैसे गणित है, गणित का भी यही नियम है, जब कोई व्यक्ति समझो ब्याज का सवाल है तो वो क्या सोचता है, शुरू में तो कुछ तथ्य लेता है, भाई मान लो मूल राशि है 100 रुपए और ब्याज की दर है 10%, तो 5 साल का ब्याज कितना होगा, तो वो निकालेगा कैलकुलेशन करके और निकल आएगा। तो इसी तरह से हम भी कुछ स्वीकृत तथ्य लेते हैं और उन्हीं के ऊपर मन बुद्धि को एकाग्र करके परिणाम को प्राप्त करते हैं और उस परिणाम को देख करके उत्साहित होते हैं और फिर और गहरे परिणाम पाते हैं और गहरे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इस तरह से एक राजयोगी हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग करता है। अब जैसे विज्ञान के पास एक तकनीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को बार बार कोई बीमारी आती है तो डॉक्टर क्या कहता है, भाई बीमारी को आने दो, कीटाणुओं को आने दो, हम तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं, शरीर में जो रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है उसको बढ़ा देते हैं वो। अब एक ही शहर में प्लेग फैल गया तो एक आदमी को तो प्लेग की बीमारी लग गई और दूसरे को नहीं लगी। अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा इसका तो जो प्रतिरोधक शक्ति है ना वो ज्यादा है, कीटाणु तो इसके पास भी आए थे लेकिन इस पे कोई असर नहीं पड़ा और आपके अंदर है ही नहीं, तो बस जरा सा कीटाणु आया और आपको रोग लग गया। तो वो कहेगा मैं आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देता हूँ। तो राजयोग में भी हम अपने पर प्रयोग करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। वो इम्यूनिटी है बॉडी की और ये इम्यूनिटी है आत्मा की। आत्मा की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। अब जैसे अपन रोज के जीवन में अपने घरों में देखते हैं, जब आप कपड़े मशीन में डालते हो तो सारा कपड़ा धुल जाता है, लेकिन आपने देखा कि कपड़े की जो बाजू है वो मैली की मैली पड़ी है और कपड़े का जो कॉलर है वो भी मैले का मैला पड़ा है। तो आपने साबुन और ब्रश लेकर के यहाँ थोड़ा ज्यादा रगड़ दिया, बाकी कहीं नहीं रगड़ा, यहाँ ज्यादा रगड़ा और कॉलर था वहां ज्यादा रगड़ा, वो साफ हो गया। आपको ज्ञान है और उस ज्ञान के आधार पे आप में धैर्य है कि भाई ये तो रगड़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये जगह ही ऐसी है, ये तो मैला होगा ही होगा, आपको इस चीज का ज्ञान। अब जैसे इस चीज की नॉलेज है, ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास 10 लोग रहते हैं, 9 लोग शांति से काम करते हैं और एक आदमी है जो कभी रूठ जाता है, कभी जिद करता है, कभी सामने बोल पड़ता है, कभी काम चोरी करता है, काम के बीच में से भाग जाता है, तो उसको भी आप समझ लो कि ये भी कॉलर और बाजू जैसा है। राजयोग आपके ज्ञान को बढ़ाता है, आपकी समझ बढ़ाता है कि भाई ये बाकी जो 9 लोग है ना ये तो बाकी कपड़े जैसे ही और ये एक कॉलर और बाजू जैसा है, ये आपको इस पे ज्यादा टाइम लगाना ही पड़ेगा, तो इसको बुलाओ, बिठाओ, थोड़ी ज्यादा इसकी पॉलिश करो, रगड़ो, मालिश करो, टोली खिलाओ, थोड़ा ज्यादा प्यार दो, थोड़ा ज्यादा इसकी पीठ पे हाथ फिराओ, इसकी महिमा करो, क्योंकि ये कॉलर और बाजू जैसा है, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई। अगर ये इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी तो आप कहोगे देखा मैंने इसको 10 बार समझाया फिर वही काम करता है, अरे ये बाजू है ना, ये कॉलर है ना, इसको 10 क्या तुम 100 बार बस समझाओ फिर भी ये मैला होगा और फिर भी आपको इसको रगड़ का लगाना ही पड़ेगा, आप समझ जाओ ना, ये तो नहीं समझता, आप तो समझ जाओ, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि इसकी आदत धीरे धीरे जाएगी या नहीं भी जाए तो भी मुझे इसको समाना भी है, सहन भी करना है और चलाना भी है और बाकियों को भी बता दो कि भाई ये बाजू और कॉलर है, इससे तुम भी इरिटेट मत होना। इम्यूनिटी बढ़ गई ज्ञान के आधार पे और योग के आधार पे। इसलिए कई बार भाई बहन पूछते हैं कि ज्ञान पहले या योग पहले, ज्ञान के बिना योग लगेगा नहीं, ज्ञान वो थ्योरी है जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ज्ञान बढ़ेगा तब आपका योग लगेगा। ज्ञान बढ़ना बहुत जरूरी है। इसी तरह से आपने कई बार देखा होगा कि बस में कोई महिला सफर कर रही है, उसकी गोद में बच्चा है। अब बच्चा रोने लगा, सारे यात्री बच्चे का मुंह देखने लगे, महिला को देखने लगे, तो महिला उसको थोड़ा हिलाती है, चुप कराती है, मनाती है, फिर खड़ी होकर के उसको हिलाने लगती है, भैया किसी तरह चुप हो जाए। अब बेचारी के पास जितने तरीके थे उसने सारे अपना लिए। 15 मिनट हो गई, बच्चा रोए जा रहा है। अब 15 मिनट के बाद उसने जोर से बच्चे को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारा तो बच्चा और जोर से रोया, और जोर से रोया तो सारे पैसेंजर फिर मुड़ मुड़ के देखने लगे। अब आपने देखा, अरे ये तो जोर से रोने लगा। आप फिर पुराने वाले तरीके पे आ गए, उसको पुचकार रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, हैं? आपने थप्पड़ क्यों मारा? इसलिए थप्पड़ मारा कि उस बिचारी की इम्यूनिटी खत्म हो गई। अंदर इम्यूनिटी होती है, एक धीरज होता है, एक सहनशीलता होती है। 15 मिनट तो वो स्ट्रोक था, 15 मिनट के बाद वो स्ट्रोक बिल्कुल खाली हो गया, तो अब क्या करेगी? अब कीटाणु घुस गए, कीटाणु घुस गए तो उसमें क्रोध भी आ गया, धीरज भी चला गया, शांति भी चली गई, और उस कीटाणु ने अपना काम कर दिया। जब कीटाणु ने काम किया तो रोग बढ़ गया। अब रोग बढ़ गया तो उसको लगा, अरे ये तो बढ़ गया, फिर वापस बेचारी उस पुराने तरीके पे आ गई, अपना स्टॉक फिर कोशिश कर रही है भरने का कि नहीं नहीं, वो तरीके से तो कीटाणु बढ़ रहे हैं, मैं वापस उसी तरीके पे आऊं। फिर वो उसको थोड़ा पुचकारती। तो जैसे इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, हमसे कोई ना कोई गलत काम, अर्थात या तो क्रोध हो जाएगा, इरिटेशन होगी, नेगेटिव सोच लेंगे, किसी ना किसी तरीके से हमारी जो इम्यूनिटी खत्म होने के जो चिन्ह है वो प्रकट होने लगेंगे। अब राजयोग क्या करता है? अब अगर हम राजयोगी हैं, राजयोग का अभ्यास करते तो पहले से हम विजुअलाइज करेंगे, मैं बच्चे को लेके तो जा रही हूँ, लेकिन ये बच्चा रास्ते में रो भी सकता है, बीमार भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज भी मांग सकता है, तो पहले से उसको योग का दान देंगे। बाबा ये आपका बच्चा है सफर में, आप इसको ठीक ठाक रखना। ये भी आत्मा है तो बहुत बड़ी, लेकिन शरीर छोटा है, तो है तो ये बड़ी पुरानी अनुभवी आत्मा, तो बाबा ये बच्चा, तो ये आपने क्या किया, आपने अपने अपनी भी इम्यूनिटी बढ़ा ली। भाई ऐसी सिचुएशन आ सकती है, और आपने बच्चे की भी इम्यूनिटी बढ़ा दी राजयोग के द्वारा। अब मान लीजिए बच्चा रोएगा भी, तो आपको, आपने वो गोली खा रखी है ना, तो आपका धैर्य खत्म नहीं होगा। और चूंकि आपने बच्चे को भी दृष्टि दे रखी है पहले से, तो बच्चे की आत्मा के ऊपर भी आपकी दृष्टि का प्रभाव रहेगा, इसलिए वो उतना परेशान नहीं होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत हो जाए। तो योग के प्रयोग का अर्थ क्या है? एक तो योग हमें विकर्म करने से बचाता है, और पुराने जो विकर्म है उनको खत्म करता है, लेकिन तब जब हम उसका प्रयोग करें, पहले से हम उसके लिए रेडी रहें। मान लीजिए हम किसी ऑफिसर से मिलने जा रहे हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रही हैं, चलिए जो ज्ञान को नहीं समझता, हमने पहले से योग का प्रयोग कर लिया, सारी सिचुएशंस की एक बार रिहर्सल कर ली, जैसे कोई मंच के ऊपर फाइनल अभिनय करता है, उससे पहले अकेला बैठ करके डायलॉग बोल बोल के देख लेता है, या वो ड्रेस पहन करके जो उसको उछल कूद करनी है वो सब करके देख लेता है अकेले में, ताकि फाइनल करे तो उसे मालूम पड़ जाए कि भाई सब ठीक हो गया। तो ऐसे ही मान लीजिए हमको मालूम है कि हम एक ऐसी जगह जा रही हैं, ऐसे व्यक्ति के सामने जा रही हैं, जहाँ जरूरी नहीं कि सब कुछ पॉजिटिव ही हो, तो हमने पहले से एकांत में बैठ करके विजुअलाइज कर लिया कि मैं सामने गया और उस व्यक्ति ने एकदम गुस्से में बोला, लेकिन मैं उसको दृष्टि देता रहा, उसके बाद उस व्यक्ति का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, उसके बाद उसने थोड़ा कम गुस्से में बोला, मैं फिर भी मुस्कुराता रहा, दृष्टि देता रहा, उसके बाद वो बिल्कुल ही शीतल हो गया, तो उसके बाद मैंने उसको ये बात कही। ये हम रिहर्सल कर रहे हैं बैठ करके, अब ये फाइनल नहीं है, ये रिहर्सल। तो इस रिहर्सल के कारण मैं तैयार हूँ और मेरी पूरी तैयारी है, कोई भी बात हो जाए, किसी भी तरह का कुछ भी हो जाए। अब ये पूरी तैयारी करने के बाद मैं उस व्यक्ति के सामने गया, तो उसमें दो बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये, क्योंकि मैं पहले ही उसको वाइब्रेशन दे करके आया हूँ, तो वो इतना उग्र नहीं होगा। और मान लीजिए वो उग्र हो भी गया, तो मुझे उस उग्रता को कैसे मैनेज करना है, उसके लिए सारी तकनीक मेरे पास पहले से मौजूद है, वो सारी की सारी बातें मैं तैयार करके आया हुआ हूँ, तो मेरे ऊपर असर नहीं आएगा। तो ये मैंने क्या किया, घटना को आने से पहले उसकी तैयारी कर ली, चुनौती आने से पहले मैं रेडी हूँ। इसको कहते हैं एवर रेडी, सब प्रकार की सिचुएशंस को मैंने बुद्धि में पहले विजुअलाइज कर रखा है। ये भी हो सकता है मैं लंबे सफर पे जा रहा हूँ, हो सकता है मुझे खाना ना मिले, तो मैंने इसकी भी प्रैक्टिस कर ली, भाई अगर खाना नहीं मिला तो मेरा मूड खराब नहीं होना चाहिए, इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, या मेरी सेवा नहीं रुकनी चाहिए, या ये जो घोड़ा है ये मेरे पे हावी नहीं होना चाहिए, है मैं कोई ऐसी चीज डाल लूं, चलो मैंने चार चने डाले, गुड़ डाला, पानी पिया और फिर भी मैं अपनी सेवा करता रहा। ये पहले से मैंने, अगर मान लो मैंने ये सब नहीं विजुअलाइज किया और मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे बहुत बढ़िया खाने को मिलेगा, वो मिला नहीं, तो क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी तो खत्म हो गई। इम्यूनिटी खत्म होगी तो कोई ना कोई रोग वार करेगा, आपका मूड खराब होगा, आपको क्रोध आएगा, मैंने इतनी सेवा की फिर भी बढ़िया खाना नहीं मिला, तो आपका विकर्म होगा, या तो आपको होगे मैं आगे से यहाँ आऊंगा ही नहीं, आगे से मैं ये सेवा करूंगा ही नहीं। तो क्या किया आपने, आपने एक अच्छा सा चांस खो दिया, या आपने संबंध बिगाड़ लिए, या मन में कोई गांठ रख ली, तो उससे हमारा संगम योगी जो कमाई का समय है उसमें तो घाटा पड़ जाएगा। तो राजयोग का अर्थ क्या है, राजयोग का अर्थ है मानव जीवन में आने वाली हर सिचुएशन के लिए हम पहले से रेडी हैं, चाहे वो संबंधों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, किसी भी तरीके से। अब जैसे एकदम प्रकृति का तूफान आया, किसान लोग आत्महत्या कर लेते हैं ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि सारा अनाज खराब हो गया। अब जो राजयोगी होगा, तकलीफ तो उसको भी होगी, लेकिन वो जब दाना बोता है उसी समय उस प्रकृति पति को समर्पित कर देता है, तू इसको जीवन देने वाला है, तू मालिक है, तू अन्नदाता है, सब कुछ तेरे हवाले है, पहले से सब कुछ हवाले कर रखा है। जिसने हवाले नहीं किया वो बीज बोने से पहले बड़े बड़े सपने पाल के बैठा था, बीज तो बोया होगा थोड़ा, सपना पाल लिया बहुत बड़ा, मैं मकान बनाऊंगा, मैं दुकान बनाऊंगा, मैं जो पैसा आएगा उसको फलानी कंपनी में लगाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, सैकड़ों सपने पाले। एक ने बीज बोया, भगवान को समर्पित कर दिया, तू जाने जीवन देना है कि नहीं देना है, क्योंकि जीवन दाता तो तू ही है, वो योग का प्रयोग कर रहा है। और दूसरा वो उड़ान भर रहा है कल्पना की। तो जब ऐसी ट्रेजडी होगी तो जिसने योग का प्रयोग किया था वो तो प्रयोग में ही है, उसी का था, वो जाने। और जिसने बड़े बड़े सपने बनाए थे उसका क्या होगा, उसको एकदम धक्का लगेगा, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी है ही नहीं, परिस्थिति का सामना करने की शक्ति नहीं। तो एक तो हम योग को इस तरह से एवरी डे यूज करें। संसार में परिस्थितियां तो बढ़ रही हैं, हर एक के सामने आती है। पहले कहा करते थे कि भाई जब तक छोटे बच्चे हैं तब तक कोई परिस्थिति नहीं है, लेकिन आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के सामने भी बहुत आती हैं, स्टूडेंट्स के सामने भी बहुत आती हैं। अर्थात संपूर्ण जीवन एक युद्ध का मैदान है, तो योग का प्रयोग एवरी मोमेंट चाहिए। हमारे पास एक कन्या आई, बहुत परेशान थी, तो मैंने कहा बहन जी क्या हुआ, तुम बहुत परेशान हो, पढ़ाई हो गई, पेपर दे लिए, अब तो कोई टेंशन भी नहीं होना चाहिए। तो कहती हमने पेपर तो दिए थे और पेपर देने के बाद हमने अपनी किताबें भी बेच दी थी या रद्दी में दे दी थी या कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटी से हम सबको एक सूचना आई है कि तुम लोगों ने जो पेपर दिए थे ना वो खो गए, इसलिए अब तुम सबको दोबारा पेपर देने हैं, अब दोबारा किताबें खरीदो, दोबारा नोट्स बनाओ। इस दुनिया में कब कहां किस तरह का पेपर सामने आ जाए कोई कह नहीं सकता है। इसलिए योगी को योग का प्रयोग हर समय करना है, अपने आप पर करना है, दूसरों पे नहीं करना है कि पेपर मिल जाए, पर अपने पे करना है कि भाई मैं दोबारा तैयारी करने की शक्ति अपने में पैदा करूं। वो भी ठीक है अगर आप शुभ संकल्प रखते ही हैं कि पेपर मिल जाए, लेकिन आपको अपने आप को रेडी पहले करना है। और दूसरी बात, जैसे हम कह रहे थे भाई योग से विकर्म विनाश होते हैं, ये बात तो हो गई कि वर्तमान में ना बने, और दूसरी है कि हमारे जो पीछे वाले हैं वो खत्म हो जाएं। तो इसके लिए तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत तरीके से समझाया है, हमारे सामने बहुत लौकिक भी एक्सपेरिमेंट है, जैसे ये जो सौर ऊर्जा का अपना प्रोजेक्ट है वो वास्तव में इसी प्रकार का है। सूर्य की एक किरण आती है तो उसे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब सूर्य की किरणों को कलेक्ट कर लिया जाता है तो उसे बिजली भी बनती है, तो अग्नि भी पैदा होती है, तो कितना कुछ उससे काम होता है। तो जैसे हमारी बुद्धि में ज्ञान के तथ्य हैं कि बाबा ज्ञान सूर्य है, और जैसे ये सूर्य है, इस सूर्य को कोई कहता थोड़े है कि भाई तुम अपनी किरण फैलाओ। जैसे सूर्य उगा और हमको लगा कि अब 11-12 बज गए, सूर्य की किरणें एकदम बीच से आ रही हैं, तो कोई भी गीली चीज जिसे हमें सुखाना है उसको हम खुले में रख देते हैं, बस रख करके और अपने काम में लग जाते हैं। हमको पता है किरण पड़ेगी और ये सूखी चीज गीली चीज अपने आप ही सूख जाएगी, कहना नहीं पड़ता, कोई अनुनय नहीं करनी पड़ती, बस रख दो सामने। तो ऐसे ही हमको किसके ऊपर अर्थात किसका परिवर्तन करना है, अपने आप का ही करना है, अर्थात मैं आत्मा ही हूँ, मुझे अपने आप का ही रूप बदलना है, अपने आप के स्वरूप को ही अधिक से अधिक पवित्र बनाते जाना है। तो ज्ञान सूर्य की किरणें तो हमेशा ही है ही, वहाँ तो दोपहर और सुबह और रात का सवाल ही नहीं है परम धाम में। ज्ञान सूर्य की प्रखर किरणें हर क्षण फैल रही है, मुझे उन किरणों के सम्मुख अपने आप को प्रस्तुत करना है, बस इतना ही काम है मेरा। लेकिन प्रस्तुत करने की जो विधि है वो विधि ये है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को कहते हो डॉक्टर साहब मेरी आंख में तकलीफ है, तो भले ही शरीर 5 फुट का है डॉक्टर आपके शरीर को नहीं देखता, क्योंकि तकलीफ कहाँ है, आंख में है। तो उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे वो केवल आंख तक ही सीमित रहेंगे, आंख में ही वो टॉर्च लगाएगा, आंख की पलक पकड़ के उठा करके आंख का रंग देखेगा, नाक आंख कान मुख कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि तकलीफ तो आंख में। तो ऐसे ही बाबा को भी किससे काम है, आत्मा से काम है, बिगड़ी तो आत्मा है, स्वरूप तो आत्मा का संवारना है, और जिन विकर्मों की हम बात करते हैं वो भी आत्मा में भरे हैं। तो ज्ञान सूर्य के सम्मुख हमको किसको रखना, शरीर को थोड़े रखना है, शरीर में विकर्म थोड़े, ये तो जलवायु अग्नि पृथ्वी आकाश पांच चीजों का एक ढांचा है। तो इस ढांचे से अलग मैं एक प्रकाश रूप आत्मा ज्ञान सूर्य की किरणों के बीच में समा गई हूँ। अब वो किरणें अपने आप अपना काम करेंगी। मेरी संपूर्ण चेतना उन किरणों में समा गई है तो महसूसता आएगी कि वो किरणें शीतल किरणें हैं, लेकिन जैसे मुझ आत्मा की धुलाई हो रही है, मुझ आत्मा का प्रकाश बढ़ता जा रहा है, मुझ आत्मा की शक्तियां बढ़ रही हैं, मुझ आत्मा के जैसे दाग धब्बे उतरते जा रही हैं, और जैसे मेरी जो लाइट है, माइट है, ब्लिस है, मुझे जो प्रेम चाहिए वो प्रेम की शक्ति बढ़ती जा रही है, ऐसी महसूसता आएगी। शुरुआत में हम संकल्प करते हैं। संकल्प हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस चीज का अनुभव करना चाहते हैं। जैसे शुरू में हम संकल्प करते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये हमें संकल्प उठाना पड़ता है क्योंकि हम आत्मा के स्वरूप को अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब मैं आत्मा हूँ संकल्प को हम करते गए, संकल्प को हम करते गए, तो अनुभव होने लगा कि मैं आत्मा हूँ। अब संकल्प करने की जरूरत नहीं है, संकल्प मर्ज हो गया और संकल्प अनुभूति में बदल गया। अब संकल्प करते करते अनुभव होने लगा कि मैं हूँ ही आत्मा। तो पहले हम संकल्प कर रहे थे, वो मेहनत लग रही थी, संकल्प उठाना पड़ रहा था, अपने स्वरूप को ध्यान दे करके देखना पड़ रहा था कि मैं आत्मा हूँ, मेरा ध्यान आत्मा से हटना नहीं चाहिए। लेकिन संकल्प करते करते वो स्थिति आई कि मैं आत्मा हो गई, आत्मा बन गई, आत्म अनुभूति में टिक गई। अब संकल्प खत्म हो गया और अब ये अनुभव होने लगा कि मैं हूँ ही आत्मा, आत्मा के अलावा मैं और हूँ क्या, मैं तो हूँ ही आत्मा। तो वो आत्म स्वरूप जब अनुभव होने लगा तो महसूसता आने लगी कि मैं एक प्रकाश का जैसे गोला हूँ, और उस प्रकाश के गोले से प्रकाश की किरणें उतर उतर करके मुझ प्रकाश के गोले में समाती जा रही, वो भी प्रकाश, मैं भी प्रकाश, और मैं उन किरणों को अब्जॉर्ब करता जा रहा हूँ, अपने अंदर समाता जा रहा हूँ। जैसे कि मैं हूँ ही प्रकाश, लेकिन मुझे और प्रकाश मिल रहा है, तो मेरा प्रकाश इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि मुझसे वो प्रकाश निकल निकल करके अब चारों ओर फैलने लगा। ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। परमात्मा पिता तो है ही सागर, और उन सागर में से वो किरणें निकल रही हैं निरंतर, लेकिन अब मैं उन किरणों को कैच कर रहा हूँ। जैसे कहते हैं बरसात हो रही है और आपने अपना बर्तन सीधा उस बरसात के नीचे रख दिया, तो शुरू में बर्तन भरेगा और फिर भरने के बाद उसमें से जल निकल करके चारों ओर फैलेगा। तो मैं आत्मा उन किरणों के नीचे हूँ, वो झरना मुझ पे उतर रहा है और उस झरने को मैंने अब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन अब्जॉर्ब करते करते मैं इतनी तृप्त हो गई, इतनी भरपूर हो गई कि अब मुझसे वो किरणें शांति की, प्रेम की चारों ओर फैलती जा रही। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं वो प्रकाश का गोला हूँ और मुझसे प्रकाश संपूर्ण विश्व में फैलता जा रहा है। जैसे मैं परमात्मा का एक माध्यम हूँ और मुझ माध्यम से परमात्मा का प्रेम, परमात्मा पिता की शक्तियाँ, परमात्मा पिता का प्रकाश संपूर्ण विश्व में फैल रहा है। तो ये जो माध्यम होने की अनुभूति है, इस अनुभूति में हम स्वयं आनंद रस में डूबे रहते हैं और ऐसे लगता है कि सारा विश्व भी इसमें डूब जाए। विश्व परिवर्तन की यही विधि है, क्योंकि जब तक विश्व की आत्माएं इस आनंद में मगन नहीं होंगी, इस आनंद का आस्वादन नहीं करेंगी, तो उनका भी परिवर्तन कैसे होगा। इसलिए परमात्मा का ये ज्ञान, परमात्मा की ये शक्तियां सारे विश्व की आत्माओं को मिले और फिर अगले दृश्य में ये महसूसता आती है कि मुझ आत्मा से जो ईश्वरीय शक्तियां विकीर्ण हो रही हैं, वो अन्य आत्माओं को महसूस हो रही हैं। जैसे विश्व की अन्य आत्माएं भी मेरी तरह से उन्हें कैच कर रही हैं, जैसे अन्य आत्माओं के भी दुख दूर हो रही हैं, जैसे अन्य आत्माओं के अंदर भी शांति की शक्ति बढ़ती जा रही है, वो भी तृप्ति महसूस कर रही हैं, और ऐसे लगता है कि विश्व परिवर्तन का ये बहुत ही तीव्र गति से वाइब्रेशन फैल रहा है, प्रकंपन फैल रही हैं, आत्माओं तक परमात्मा पिता की शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं पहुंच रही हैं, मैं उनका माध्यम हूं। तो ये जो हमारी स्थिति है, इस स्थिति में जब हम अनुभव करते हैं लंबे समय तक, तो हमारे जो पुराने संस्कार थे, हमें मालूम ही नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं, और जो परमात्मा पिता के संस्कार है, वो संस्कार हमारे भी बन जाते हैं। जैसे दया का संस्कार, करुणा का संस्कार, देने का संस्कार, या आनंदमय, हर परिस्थिति में आनंदमय रहने का संस्कार, हमें मालूम नहीं पड़ता, हमने मेहनत नहीं की, हमने तो केवल अपने आप को बाबा की उन रसमयी किरणों के आगे समर्पित कर दिया, बस, बाकी हमने कुछ नहीं किया। और उस समर्पण का परिणाम ये निकला कि बाबा ने अपने संग का रंग हमको लगा दिया और बाबा की शक्तियां हमें उतर उतर करके हमारी कमजोरियां नष्ट हो गई, हम शक्तिशाली बन गए, और बाबा ने हमसे कितना बड़ा पुण्य कर्म करवा लिया, क्योंकि हमको माध्यम बना दिया एक विश्व परिवर्तन का, ईश्वरीय शक्तियों को विश्व में फैलाने का। तो हमारा कितना पुण्य का खाता जमा हुआ, कितना हमारा स्वरूप बदला, कितने हमारे पुराने संस्कार जल गए। इस स्थिति का जब हम बार बार अनुभव करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी कितनी बढ़ जाती है और हमारे जो मूल संस्कार हैं वो कैसे जागृत हो जाते हैं। जैसे उन संस्कारों के ऊपर जो धूल पड़ी थी वो पूरी की पूरी छंट गई, तो जो प्रेम का गुण था उसके ऊपर धूल पड़ी थी, लेकिन जब बाबा की किरणें हम पर पड़ी तो वो जो प्रेम के संस्कार पे धूल पड़ी थी वो हट गई, अब वो प्रेम का संस्कार पूरी तरह से इमर्ज हो गया। जिसको हम कहते हैं कि योग का लक्ष्य है कि हमारे जो सात मूल संस्कार हैं वो 100% हो जाए। जब हम परम धाम से उतरे तो ये सातों संस्कार 100% थे, लेकिन हमने इनको यूज किया, सतयुग में प्रेम को यूज किया, शांति को यूज किया, यूज तो किया लेकिन भरा नहीं। अब यूज सतयुग में तो थोड़े कम यूज हुए, त्रेता में कम, द्वापर कलयुग में तो यूज किया भरा नहीं, तो ये खाली हो गई। अब हमारा लक्ष्य क्या है कि आत्मा के ये जो मूल सातों गुण हैं, इनको हम फिर से 100% भरपूर कर ले। इसी को कहते हैं बैटरी चार्ज हो गई, और जब ये कम होते हैं इसी को हम कहते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो गई। जैसे प्रेम का स्टॉक खाली हो गया, तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई, आप किसी को निस्वार्थ प्रेम देंगे नहीं। कोई आपसे प्रेम एक्सपेक्ट कर रहा है, आप उसको प्रेम दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि बैटरी अंदर खाली पड़ी। अब ये बैटरी भरेगी कैसे? आप योग में बैठे, बाबा प्रेम का सागर है, मैं भी प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, जो मेरे से नफरत करेगा मुझे उसको भी प्रेम देना है, जो मुझे विरोध करेगा मुझे उसको भी प्रेम देना है, जो मेरे से नेगेटिव वे में बात करेगा मुझे उसको भी। तो ये हम क्या कर रही हैं? अपनी बैटरी को भर रही हैं, रोज भरते हैं, खर्च कम करते हैं, भरते ज्यादा है, भरते भरते एक दिन ये 100% दिन ये 100% हो जाएगी, तो हमारा प्रेम का स्टॉक भर गया, शांति का स्टॉक भर गया। अगर वातावरण में अशांति होगी तो भी मैं शांत रहूंगा, कोई मेरे से गुस्से में बोलेगा तो भी मैं शांत रहूंगा, बाबा शांति का सागर है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा धर्म है, मैं अपनी शांति को नहीं छोड़ूंगा। जैसे मैं अपनी बहुमूल्य चीजों को संभाल के रखता हूँ, शांति भी मेरी बहुमूल्य चीज है, गहना है मेरा, मैं इसको छीनने नहीं दूंगा। चोर तो आएंगे, छीनने की कोशिश करेंगे। ये मैंने अपने शांति के स्टॉक को भर लिया खाली टाइम में। अभी मेरे सामने अशांति की सिचुएशन आई नहीं है, भर लिया। तो ये मेरा भरते भरते 100% हो जाएगा। फिर सुख के स्टॉक को मैंने भर लिया, मैं आत्मा ही सुख स्वरूप हूँ, चीजों में सुख नहीं है, मुझे कुछ मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, चीजों के आधार पे मैं सुखी नहीं हूँ। जैसे बाबा सुख का सागर है, सुख तो मुझे आत्मा का मूल गुण है, खुशी तो मुझे आत्मा का मूल गुण है, हर परिस्थिति में मुझे अपने सुख को बना के रखना है, अपनी खुशी को बना के रखना है, कुछ भी हो जाए मैं अपनी खुशी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये हमने अपने सुख के स्टॉक को, खुशी के स्टॉक को भर लिया, और ये भी भरते भरते 100% हो गया। तो मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, राजयोग में हम क्या करते हैं, जो 7 मूल गुण थे उनको हम भरपूर करते हैं, और जब ये भरपूर हो जाएंगे, माना विकर्म विनाश हो गए। विकर्म का मतलब क्या है? विकर्मों का खाता भरा पड़ा है, आपके सिर पर बहुत बोझ है, आपके सिर पर पापों की गठरी है। उसका मतलब क्या है कि उस पापों की गठरी ने मेरे इन सब खजानों को ले लिया, और उसकी जगह नेगेटिविटी है, नफरत है, क्रोध है, ईर्ष्या है, ये पापों की गठरी है। तो अगर मैं ये पुरुषार्थ करूं कि मेरी ईर्ष्या मिटे, मेरी ईर्ष्या मिटे, कभी नहीं मिटेगी, लेकिन मैं ये पुरुषार्थ करूं कि मेरा निस्वार्थ भाव, जैसे बाबा निस्वार्थ है तो मैं भी निस्वार्थ बनूं, बाबा हमको इतना ज्ञान देता है, इतना ऊंचा उठाता है, बदले में बाबा हमसे कुछ नहीं लेता, तो मैं भी तो बाप समान हूं ना, मैं भी किसी का उपकार करके बदला क्यों मांगू, मैं किसी को आगे बढ़ाता हूँ, किसी को ऊंचा उठाता हूँ, तो बाबा समान हूँ, मैं भी बाप समान निस्वार्थ हूँ, तो ईर्ष्या अपने आप मिट जाएगी। जैसे बाबा सबको अपने से आगे करता है, बाबा कहता है मेरे बच्चे मेरे भी सिर के ताज है, मेरी पूजा सिंगल होती है, बच्चों की डबल पूजा होती है, तो मैं भी बाप समान बनूं। जब बाबा औरों को अपने से आगे करके भी आगे है तो मैं भी बाप समान बनूं। तो मैं कमजोरी को छोड़ने का पुरुषार्थ नहीं करूं, लेकिन मैं अच्छाई को अपने में भरने का पुरुषार्थ करूं। तो उससे क्या होगा, वो अच्छाई भरते भरते एक दिन 100% हो जाएगी, तो जैसे बैटरी फुल चार्ज हो गई। ये हमारा उद्देश्य है योग करने का। इसलिए जब भी खाली समय मिले, बाबा ने कहा बच्चे आपको बैठ के योग नहीं करना है, क्योंकि बैठ के सारा दिन टाइम थोड़े मिलेगा, हम तो कर्म योगी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिले तो अपने संकल्पों को हमें चेक करना पड़ेगा कि मेरे संकल्प बैटरी भरने का काम कर रही है या खाली करने का काम कर रही है। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि उसने मुझे ये नहीं दिया, उसको देना चाहिए था, देखो वो हमेशा मुझे जब भी मिलता है ना तो ऐसे ही टेढ़ी नजर से देखता है, तो मैं अपनी बैटरी को खाली कर रहा हूँ। अगर इसकी जगह मैं ये संकल्प करूं कि मैं तो हूं ही दाता का बच्चा, दाता मेरी नजरें तो सदा ही शीतल हैं, मैं तो सदा ही देने वाला हूं, मैं तो मेरे सामने जो भी आएगा उसको भरपूर ही करूंगा, तो मैं ये बैटरी भरने का काम कर रहा हूं। अर्थात जितने मैं पाप समान संकल्प करता हूं, पॉजिटिव संकल्प करता हूं, तो मानो मैं किसी और पे उपकार नहीं करता, अपनी बैटरी भरता हूँ। और जब मैं दूसरे की किसी बात से प्रभावित होकर के नेगेटिव संकल्प करता हूँ तो किसी और का बुरा नहीं करता लेकिन अपनी बैटरी को खाली करता हूँ। तो बार बार अपने को ये चेक करना पड़ेगा कि मेरे संकल्पों की क्वालिटी नीची तो नहीं हो गई या डाउन तो नहीं आ गई। जब हम बाबा के बच्चे बने तो सबसे पहला जो असर आया वो हमारे संकल्पों के ऊपर ही आया। जैसे भाई बहन बताते हैं कि हम लोग बड़े भागते भागते आए मधुबन में और ये सोच के आए थे कि भाई एक दिन से ज्यादा नहीं रहेंगे, और ये सोच के आए थे कि वहां भी घर में 5-6 बार फोन करेंगे, हालचाल पूछेंगे, दुकान पे 5-6 बार फोन करेंगे, पूछेंगे भाई ग्राहक ठीक से आए, सौदा ठीक से हुआ, आमदनी हुई, बचत हुई, ऐसी पूरी प्लानिंग करके आए। लेकिन जैसे ही यहाँ आए और थोड़ी सी भी बाबा की अनुभूति हुई तो वो सब कुछ भूल गई, सारी चिंता खत्म हो गई। और मन में ये विचार आया कि नहीं एक दिन नहीं यहाँ, तो हम 2 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, तो शुरुआत हो गई, विचारों के परिवर्तन की शुरुआत हो गई, शुरुआत होगी, चिंता मिटेगी। फिर धीरे धीरे क्या होगा, हमारे संकल्प और शक्तिशाली बनेंगे। पहले हमारी अपनी चिंता मिटी, अब ऐसी स्थिति आएगी कि कोई हमारे सामने चिंता से भरा हुआ आया और हमें देख के उसकी चिंता मिट गई, हमारा स्टॉक जैसे जैसे फुल हुआ तो अब हम देने वाले बन गए, हम अपने संकल्पों से दृष्टि से औरों की चिंता मिटाने वाले बन गए। तो धीरे धीरे फिर और इससे ऊंची स्थिति आएगी, एक दो की नहीं, सामूहिक रूप में हम कहीं बैठे और सामूहिक रूप में अनेकों की चिंताएं मिट गई, अनेकों को हमसे वाइब्रेशन मिल गए, एक दो को नहीं, और ऊंची स्टेज हो गई। तो जैसे जैसे विकर्म विनाश होंगे, जैसे जैसे ये 7 जो हमारे मूल गुण हैं अपनी फुल अवस्था तक आएंगे, वैसे वैसे हम बिना मांगे वाइब्रेशन से देने वाले बन जाएंगे, दाता बन जाएंगे, दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बन जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे मनोकामना पूर्ण करने वाले, जैसे मनसा देवी का गायन है, वो आप प्रैक्टिकल में बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमको ध्यान भी संकल्पों पे ही रखना है। जैसे सारा दिन में हम कर्म करते हुए संकल्प चलाते हैं, तो अगर कर्म करते हुए हमारी एनर्जी लीक हो गई तो फिर जब हम योग में बैठेंगे तो उस समय वो स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए कर्म करते करते एनर्जी को लीक नहीं होने देना है, ये बहुत सूक्ष्म चीज है। और कर्म करते करते मन के अंदर बहुत विचारों को एकत्रित नहीं होने देना है। जैसे अपन देखते हैं, अपन ने सुबह सुबह घर की सफाई की, बहुत अच्छे से सफाई की, और घर की खिड़की दरवाजे भी बेशक बंद है, पर्दे भी उनके आगे लगे, लेकिन आप शाम को फर्श पे ऐसे उंगली लगा करके देखना, मिट्टी लगी मिलेगी। ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक जगत ऐसा है। बारीक बारीक धूल के कण पता नहीं कहाँ से आकर के फर्श पे या जो भी होगा, बर्तन पड़ा होगा उस पे या कपड़ा होगा उस पे गिरी जाएंगे। अब मन की टेंडेंसी भी ऐसी है। आपने सुबह सुबह मन को एकदम योग लगा करके स्वच्छ किया, ज्ञान से भरपूर कर लिया, लेकिन सारा दिन जो कर्म करेंगे ना, उसमें थोड़ी बहुत किसी को देख लिया, किसी की बात को सोच लिया, या कर्म करते हुए किसी का असर आ गया, ये होगा। हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों होता है, ये होगा, लेकिन होते हुए भी हमको इसके प्रभाव को बिल्कुल खत्म कर देने की तकनीक सीखनी पड़ेगी। इसलिए कर्म करते हुए बहुत अटेंशन देना पड़ेगा। एक बार सुबह सुबह बहुत अटेंशन दे लिया और फिर कर्म में लापरवाह हो गए, नहीं, कर्म करते हुए भी, खाते हुए भी, बोलते हुए भी, जैसे बाबा ने कहा बच्चे धीरे बोलो, हम तेज आवाज में बोले उसका भी योग पे असर आएगा, कम बोलो, जहां हमको दो शब्द बोलने थे वहां हम चार बोल गई, उसका भी जब हम योग में बैठेंगे और ये एकदम विकर्म विनाश वाली स्थिति में पहुंचना चाहेंगे तो उस बोल का भी असर आएगा। या जैसे बाबा ने कहा अनासक्त होके खाओ, लेकिन खाते समय किसी चीज में थोड़ी आसक्ति आ गई तो उस आसक्ति का भी जब आप योग में बैठेंगे तो असर आएगा। वो चीज, वो मन सुख समय, उस जब आप मन को बाबा के पास ले जाने की कोशिश करेंगे तो इस मन के ऊपर दिन भर में जो जो प्रभाव पड़े होंगे, किसी की शक्ल सूरत का प्रभाव पड़ा, चाहे अच्छा चाहे बुरा, किसी से हम प्रभावित हो गए, तो जब आप इस मन को ऊपर उठाना चाहेंगे तो आपको लगेगा कि इजीली उठ नहीं रहा है, इसके ऊपर कई हल्की हल्की बातों का वजन आया पड़ा है। कौन सी बातें इसे ऊपर नहीं उठने दे रही, जो दिन भर में छोटी छोटी बातों ने इसके ऊपर प्रभाव डाला था। हालांकि आपने अपने को बहुत बचाया, आप किसी भी नेगेटिव बात के नजदीक नहीं गए, कोई आपने मर्यादा का उल्लंघन नहीं होने दिया, लेकिन सूक्ष्म, तो वो जो सूक्ष्म बातें हैं उनकी भी हमको बार बार चेकिंग करनी पड़ेगी। और उस सूक्ष्म प्रभाव को भी, जैसे कहते हैं, खत्म करना पड़ेगा। और जब इस तरह से हम अपने मन को फ्री रखेंगे, बुद्धि को फ्री रखेंगे, बात आई और उसी समय उसको खत्म कर दिया, तब मन और बुद्धि दोनों लाइट होकर के बाबा की माइट को अपने में भर सकेंगे। इसलिए दुनिया में भी जो प्रयोग होता है, जो लैब होती है, उसको बहुत सावधानी पूर्वक संभाल के रखा जाता है। भाई बहुत नाजुक इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए उसको बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखा जाता है, ताला बंद करके रखा जाता है। कोई ऐसी वैसी चीज अगर इसमें अंदर चली गई तो एक्सपेरिमेंट करने में मुश्किल होगी। एक्सपेरिमेंट के जो उनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको भी वो बहुत संभाल करके रखते हैं। तो हमारे तो इंस्ट्रूमेंट दो ही हैं, मोटे तौर पे दो ही हैं, एक मन और एक बुद्धि, जिनके थ्रू हमको एक्सपेरिमेंट करना। अगर इन पे धूल पड़ गई, मिट्टी पड़ गई, ये बिगड़ गए, या इनकी थोड़ी इनके ऊपर कोई भार आ गया, ये बोझिल हो गई, तो एक्सपेरिमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट ही बिगड़ गए तो अब एक्सपेरिमेंट करेंगे कैसे? हमको कितना तो टाइम इनको संवारने में ही लग जाएगा, फिर वो शक्ति लेने का कार्य होगा कैसे? इसलिए सारा दिन में हमारा जो सबसे ज्यादा ध्यान रहना चाहिए वो अपने मन के ऊपर, ना निंदा का असर आया, ना स्तुति का असर आया, ना किसी की अच्छी बात का असर आया, ना बुरी बात का असर आया। साक्षियों के देखा देखा भी ऐसे भी नहीं कि भाई सब कुछ छोड़ करके कोने में बैठ गए तो भी योग नहीं लगेगा, रहे भी बीच में, देखा भी, लेकिन बार बार जो असर आया उस असर को जैसे खत्म करते चले गए। ऐसा जब हम अपने इन दो इंस्ट्रूमेंट को संभाल के रखेंगे, इसलिए हम देखते हैं कि बाबा की मुरली में जो सारी की सारी सावधानी होती है वो मन और बुद्धि के लिए होती है। मन और बुद्धि जैसे होंगे संस्कार तो फिर बाद में वैसे बनेंगे, वो तो फॉलो करते, लेकिन लीडर ये दो ही है। तो बाबा बार बार इन्हीं के ऊपर ध्यान खिंचवाते हैं, क्या आपका मन ऐसा है, क्या आपके मन ने ऐसे किया, क्या आपकी बुद्धि सारा दिन ऐसी रही, क्योंकि इन दो के माध्यम से ही हमारे सारे काम होते हैं, अर्थात हमारे सारे जीवन का आधार इन दो के ऊपर ही है। तो हमें इन दोनों सूक्ष्म शक्तियों को हर प्रकार की नेगेटिविटी से बचाना है, तब हम बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कर पाएंगे और तब हम अपने पुराने खाते को खत्म करके और अपने जो मूल सात गुण हैं उनको 100% के मार्जिन तक ले जा पाएंगे। ओम शांति।